अब उसमें काफी दरार है जी, एंड वी हैव टू मेंड दिस अप जी। हमारी पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी और जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं, हम कतन, चाहे कोई हुकूमत में है, कोई गवर्नमेंट में है, कोई बिजनेस में है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, नेशनल इंटरेस्ट की जब बात आती है तो हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते जी।
आलम, यह है कि जब मैं और आप अपने घर की बात करते हैं ना, तो हम अपने बच्चों की बात अपने सगे भाई बहनों तक के साथ भी नहीं शेयर करना चाहते। और स्टेट मैटर्स को अगर हम रोड पे आकर रिजॉल्व करेंगे, वो चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, पाकिस्तान की जो सूरत हाल आपको क्या नजर आ रही है कि आर वी एक्सपेक्टिंग एमरजेंसी और मार्शल लॉ?
अल्लाह ना करे जी, मैं तो यही कह सकता हूँ। देखें, हम इस वक्त एक हैं ऑलमोस्ट, मैं कह सकता हूँ वी आर हेडिंग और वी आर ऑलरेडी इन टू अ डेड लॉक सिचुएशन जी। जो अपोजिशन है या साबिक गवर्नमेंट जो है, उनकी एक इंटेंशन है कि एक बाकायदा एक मोटिवेटेड इंटेंशन के तहत हमें हुकूमत से निकाला गया, एंड वी आर द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी विच हैड नंबर्स इन द पार्लियामेंट, और दूसरों को इट वॉज अ मेड अप सिचुएशन, 12-13 जमातों को। इन फैक्ट्स को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है, एक हकीकत है जी, एक सिटिंग गवर्नमेंट को। और जो रीजन बनाया गया, वो रीजन भी मेरा ख्याल है कम अज कम पाकिस्तान की अवाम उन्नास ने वो कंटेंशन नहीं एक्सेप्ट की। लेट्स बी रियलिस्टिक, देखिए हम हकायक को डिफाई नहीं कर सकते। इस सारी वजह से इमरान खान साहब की और फिगर्स हैं और स्टेटिस्टिक्स हैं कि जब हुकूमत थे तो क्या पॉपुलैरिटी थी और इससे उनकी क्या पॉपुलैरिटी है। तो ये जो पॉपुलैरिटी है, एक ज़बान खल्क है, विच इज़ अ वेरी ऑब्वियस इंडिकेटर और अ बैरोमीटर टू टेल कि कौन सा फैसला ठीक था और कौन सा फैसला गलत था। या तो आवाम की राय को रद्द कर दिया जाए बिल्कुल, आप उसको कर, क्योंकि मेरा ख्याल है एक अगर आप हकीकत को डिफाई करेंगे, दिन को रात कहेंगे, रात को दिन कहेंगे, तो कहने से नहीं वो हो जाएगा जी। तो मेरा ख्याल है कि वो फोर्सेज जिनको ये सूरत हाल नहीं सूट करती, नेशनल इंटरेस्ट तो ये है जी, फिर इसको एक्नॉलेज करें। इलेक्शन एक रास्ता है, एक रास्ता है, एक आईनी रास्ता है। वैसे भी तकरीबन मुद्दत यह हुकूमत मुकम्मल की बैठी है, अगर ऑब्जेक्टिवली आ जाइए चलें, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत परफॉर्म नहीं थी करी या कुछ जो कुछ भी हो रहा था, तो उसके बाद भी अब 6-1 महीने तो हो गए हैं। मैं ये तो नहीं तवक्को करता कि 6-1 महीनों में कोई बड़े मुइज़े हो जाएंगे, लेकिन आपको कोई पॉलिसीज के नतायज की कम अज कम उम्मीद तो नजर आना शुरू होती है ना जी। तो इस किस्म की भी कोई चीज आपके सामने नहीं है, बल्कि इस चेंज से जो हमें नुकसान हुआ है बाय इट सेल्फ, मैं सिर्फ अभी फाइनेंशियल लॉस की बात कर रहा हूं, जो बाकी लॉसेज हैं वो तो अपनी जगह के ऊपर हैं। और ये जो फाइनेंशियल लॉस होता है जी, इसमें टू बिल्ड द सेंटीमेंट एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर और द इन्वेस्टमेंट मार्केट, ये मामूली नहीं होता। उसको रिकवर करने में कोई भी भले आए, चाहे पीटीआई की हुकूमत आती है, जो भी हुकूमत आती है इलेक्शन के बाद, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जी। तो ये तो जो यहां से आप बात हमारी शुरू हुई थी, वो तो बड़ी ऑब्वियस है जी कि वो इसका मतलब कि फैसला ठीक नहीं था, आवाम की राय। और उसमें राय सिर्फ आप जलसों पे ना नहीं कीजिए, आपके पास जो दो इलेक्शन हुए हैं पंजाब के सूबाई असेंबली के और उसके बाद ये कौमी का रिसेंट अबाउट 2 वीक्स अगो, ये
केपी का में भी ये जीत
बड़ा
गए।
बड़ा बड़ा वाजे है जी, उसके बाद केपी बड़ा वाजे है। तो इस हकीकत को अगर आप डिनाई करेंगे या डिफाई करेंगे, तो मेरे नहीं ख्याल कि इसमें कोई विजडम है जी, ये कोई दानिशमंदी की बात नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि पीटीआई और इमरान खान इज अ मैसिव सपोर्ट टू रेकन विद जी, इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। और इस हकीकत को तस्लीम कर, जब कहते हैं कि अवाम की राय और सब कुछ, तो फिर अवाम की राय का एहतराम करें जी इलेक्शन के, चूंकि देखें ना, या तो नतीजा को अक्स हो रहा होता है इस चेंज का, उसका भी कोई मुस्बत नहीं हुआ। और दिन ब दिन हम हर तरह से, आप देखें ना, अब ये थोड़ी सी बात है, यही बात आप देख लीजिए कि अभी आपने एक बात कही के इदारों में और नेशनल सिक्योरिटी हमें एक पर्दा और उस तरह खुल के सड़क के ऊपर नहीं होना चाहिए। सिर्फ 6 महीने में ये देख लें कि ये सिचुएशन कितनी डिटेरियरेट हुई है, आपके सामने है। क्या 6 महीने पहले इतनी ऑब्वियस थी ये चीजें? गो थी, लेकिन क्या उसकी एक्सटेंट ये थी? अगर रिलेटिव कंपेरिजन
प्रेशर बिल्ड हो रहा था एक अरसे
जी, एग्जैक्टली। अब मैं ये गुजारिश कर रहा हूं ना जी कि चीजें जो आपने जिन चीजों की निशानदेही 2-3 पॉइंट्स की है, वी लॉग या जिस तरह लूज स्टॉक, ये सब चीजें जो हैं और ज्यादा डिवाइड ला रही हैं जी। देखें, इस सेंटीमेंट को, हकीकत को जबान खल नकार है खुदा, ये फैक्ट एक्नॉलेज करना पड़ेगा जी। ये अब
वो
की बात नहीं,
लीडिंग जो लोग हैं उनको समटाइम्स दे गॉट टू बी वाइज। से रिजीम चेंज हुआ, आई थिंक इट इज हर चीज का एक एक्शन का रिएक्शन होता है। जो मुझे अवाम का रिएक्शन नजर आ रहा है वो ये कि हम किसी की गुलामी नहीं लेंगे। वो साइफर के मामले के बाद पीपल जो है ना, दे हैव मोर एंगर के बाहर से डिक्टेशन क्यों ली गई। मगर जो चेंज आया था, जाहिर है चाहे सीटें खरीदी गईं या जो भी की। जब खान साहब भी तशरीफ लाए थे तो जहांगीर तरीन साहब ने अपना जहाज को उड़ाया था, बहुत से लोगों की लेन देन हुआ था, बिल्कुल हुआ था, जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको भी खरीदा गया था। तो आप क्या समझते हैं कि जो बजाय इसके कि आप रिजाइन करें और फिर आप रेजिग्नेशन भी वापस ले लें, आपको असेंबली में बैठना चाहिए था, मगर आप असेंबली से बिल्कुल निकल के सड़कों के ऊपर आ गए तो मुल्क तो फिर स्टॉल हो जाएगा, मुल्क तो खड़ा हो गया, आपके कारोबार सारे बंद हो गए, वी आर नॉट हेल्पिंग आवर कंट्री।
देखिए ये एक कंटेंशन है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उस वक्त की लीडरशिप का एक पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर इमरान खान असेंबली में ना होते, मैं एक बात करता हूं आपसे, और बात है इस वक्त वो तो एक होता ना कि असेंबली में होते तो बेहतर ऑपोजिशन देते, एक फोरम से ऑपोजिशन देते, इस हद तक तो मैं एग्री करता हूं आपकी बात को, बट द फैक्ट रिमेन्स कि अब जो गवर्नमेंट इनकमबेंट्स है, जो इस वक्त हुकूमत वक्त है, असल लाइबिलिटी तो परफॉर्मेंस की इन पर है। आप मुझे बताइए कि इमरान खान का सारा रवैया एक तरफ कर दीजिए, मान लिया सारी बात, बट इफ दे वुड हैव परफॉर्म्ड, और अंग्रेजी में कहते हैं नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, ये सारी बातें धरी की धरी रह जाती है।
सर दे आर सक्सेसफुल, दे डिड वन थिंग, दे डिलीवर्ड इट 1985 से बाद नैप की सारी तरह
जी, वो तो अपनी सारा जाती है,
एवरीथिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट दे डिड इट।
मैं वही तो गुजारिश की कि यही सब कुछ अगर यही फोर्सेज इकट्ठे होके, नंबर तो थे ना, चले 172 वर्सेस 170 या 175 आप कर ले, आधे तो थे ना, और सारी फोर्सेज भी थी, एक इमरान खान अकेला था ना, बाकी सब कुछ तो इनके साथ थी, अब सारी फोर्सेस इंटरनेशनल भी आप कह लें, इदारे भी कह लें, सब इन्हीं के साथ थे ना, तो इन्होंने सिर्फ परफॉर्म करना था। तो मैं गुजारिश की कि ये जो
एकदम से रुपए की कीमत भी बेहतर हो जाती है, डॉलर की कीमत गिर जाती है, और मगर अभी तक चीजें स्टॉल्ड
है। ऐसे देखें, मैंने उस देखें इकोनॉमी जो है, आप बाकी चीजों में परसेप्शन कहानी है सब कुछ चीजें चल सकती हैं, व्हेन यू कम टू इकोनॉमी ऑफ द फिर फैक्ट्स बोलते हैं जी, और जो रियलिटी है और जो रियलिस्टिक हकायक की जो हकायक से आप पस मंजर रह के नहीं कोई सियासत कर, इकोनॉमी जो है इट्स अ रियलिटी जी, सिस्टम परफॉर्म करेगा तो इकोनॉमी बेहतर होगी, एज सिंपल एज इट इज जी, और उसमें बहुत कुछ, एवरीथिंग हैज टू बी इन ऑर्डर जी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत पे थी जी, विच दे डिडंट परफॉर्म, बट दिस वॉज वन ऑफ द वेरी, जिसकी एक रीजन दिया जाता है इस चेंज का ऑफ द रिकॉर्ड, वो ये भी एक दिया जाता है कि सिंस पीटीआई गवर्नमेंट वॉज नॉट परफॉर्मिंग, तो दे वर मोर एक्सपीरियंस पीपल, ज्यादा गुरु थे इन कामों के, तो आपके सामने है जी। मैं वही गुजारिश करता हूँ, आई एम रियलिस्टिक कि मैं कहूँ कि 6 महीनों में को बहुत ये 30 मारखानी करके आपको दिखा देंगे, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है कि कुछ तो आपको नजर
आ रही है। आपका एक रिसेंट इंटरव्यू मुझे सुनने को मौका मिला, परसों की बात है, उन्होंने ये लफ्ज कहा है कि इलेक्शन तब तक नहीं होंगे जब तक के नया चीफ आ जाता है, जब तक के हम इलेक्शन के लिहाज से कुछ तब्दीलियां नहीं कर लेते, वो होने के बाद, यानी देर आर फ्यू थिंग्स इन दी पाइपलाइन जो अपने लिहाज से चेंज करने के बाद वो इलेक्शन की तरफ।
यू हैव एनी आइडिया? देखें बिल्कुल, देखें बात हुई, फिर बात तो ये हुई ना कि यहाँ तो एजेंडा अपना अपना है, कौमियत की बात कहाँ गई? अभी आपने सारी बात ही इस पे की थी कि हम सड़क पे ना, सारी बात ही हमारी बात की स्पिरिट हो रही थी नेशनलिज्म के ऊपर। जो इस वक्त हुकूमत है या जो 13 जमातें हैं, मुझे इसमें भी तो बता देना नेशनलिज्म कहाँ पर है। कोई एक चीज जिसमें आप क्या नेशनल इंटरेस्ट में की हो, एक एक्शन मुझे गिन के बता दीजिए जो नेशनल इंटरेस्ट में की हो
जनाब
आपके सामने। और उनका माजी, उनका देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, अदालतें हैं, सब कुछ है, दे हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू गेट देम सेल्फ एक्सोनरेटेड। मिसाल के तौर पे एक आप एवन फील्ड के ही देख लें तो एक ही सवाल है ना जी कि सोर्स ऑफ इनकम क्या था, सोर्स ऑफ इन्वेस्ट, ये पैसा आया कहां से था?
सारा कुछ क्लियर कर दिया। मेरा ख्याल है लोग जो इतने अच्छा, मैं लास्ट एक सवाल आपके साथ करना चाहती हूँ, बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स का, विलेज टेस्ट ओंटेरियो का सबसे बड़ा बफे आपको यहाँ मिलता है 4141 डिक्सी रोड पे, विलेज टेस्ट। वी आर ऑल्सो स्पॉन्सर्ड बाय हियर मैक्स, अगर हियरिंग एड्स आपको चाहिए लेटेस्ट डिवाइसेस के लिए, हियर मैक्स HEAR MAX, अपनी कुव्वत समाअत को मैक्सिमम करने के लिए आप उन पे काउंट कर सकते हैं। और अगर आपने रकम पाकिस्तान भिजवानी है तो एबल एक्सप्रेस के नाम को याद रखिएगा, इमरान मुजफ्फर एबल एक्सप्रेस, द मैन वर्कड हार्ड पाकिस्तान लीगल तरीके से पैसा भिजवाने के लिए, एबल एक्सप्रेस, ठीक, आप हमारी वेबसाइट से ले लीजिएगा। आप एक बात करें, मैं फिर आपसे अगला सवाल करती हूं, आप थोड़ा एनालाइज कर दें।
आपका एक थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया अगर इजाजत हो तो मैं कर लूं।
जी जी,
आपने कहा था हुकूमत से, जब आपने साइफर की बात की, देखें साइफर के मतलब मैं एक शहरी हूं पाकिस्तान का, मैंने एक राय बनानी है, मैं राय किस बेस पे बनाऊंगा? उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उस पर एंडोर्स किया गया था कि यह हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद ये सारे कहा कि एक कागज लहरा दिया गया, उसको एक तरफ कर दें। उसके बाद हुकूमत चेंज हुई, हमारे जो सफीर उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में थे उनको बुलाया गया, उन पर बड़ा प्रेशर डाला गया। अभी आपने बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ही रिएट्रिएटेड, उन्होंने कहा नहीं जी, ब्लैक एंड व्हाइट में उन पर हालांकि बहुत, मैं आफरीन, मैं सलाम करता हूं उनको जी, ही रेजिस्टेड ऑल दैट प्रेशर। उन्होंने कहा मैं एग्जैक्टली ट्रांसलेट करके बताता हूं दिस व्हाट हैपेंड, उनका बयान आया था पूरा अखबार में जी। तो उसके बाद फिर आपको क्या उस पर एम्बिग्विटी रह गई जी? मैं आपको गुजारिश की कि जब आपने कहा ना कि बातें वहां की और नेशनल सिक्योरिटी, जब ये चीजें, जब नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम की वो चीजें जो एक पर्दे और उसमें होनी चाहिए, व्हेन थिंग्स आर रब्ड टू अचीव अनदर एजेंडा और एजेंडा, एक और कोई आपका, आपके और कोई मकासद हो, या अगर आपने एक और थीम को फॉलो करना है उसको साबित करने के लिए, जब आप इन हकायक से बाहर निकलेंगे तो फिर ये होगा अनफॉर्चुनेटली। मैंने इसलिए बहुत पहले आपको कहा था इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे है, लेकिन देखने की बात है कि किस पे ज्यादा है। आज तक तो पर्दे में थी ये चीजें, अब पर्दे से बाहर क्यों आ रही हैं चीजें? आई थिंक वी नीड टू सीरियसली फॉर नेशनल पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉर द प्रेस्टीज ऑफ पाकिस्तान, मेरा ख्याल है सबको, इदारों को, सियासी जमातों को मिलकर बैठ के जो है ना जी कई लाइन्स ड्रॉ करनी चाहिए।
फॉर द प्रेस्टीज ऑफ पाकिस्तान, फॉर द प्रेस्टीज ऑफ पाकिस्तान, दो क्वेश्चन है, दोनों मुख्तसर जवाब चाहिए क्योंकि हमारा अगला इंटरव्यू इमिग्रेशन मिनिस्टर से है, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू, सुनते रहिएगा। जनाब प्रेजिडेंट अलवी साहब ने इजलास तलब कर लिया है, डू यू थिंक इज देयर एनी चांस कि वो असेंबली को डिजोल्व करने का कह दें?
इस वक्त एक तो पाकिस्तान में जी, जब आप ऐसा एक वाइड सवाल करेंगी ना जी, वाइड एंगल सवाल इसको मैं कहूंगा, वाइड एंगल लेंस आपने सुना होगा कैमरे में, ये वाइड एंगल पाकिस्तान में एक हर वो नामुमकिन है मुमकिन हो सकता है जी, इतनी वाइड पॉसिबिलिटी और अप्रोक्सीमेटीज हैं जी कि लेट्स सी आई एम श्योर के
अलवी को बुलाने की क्या वजह हो सकती है,
बहुत इसके बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं जी, कई एंगल्स हो सकते हैं। वो प्रेजिडेंट सदर पाकिस्तान है, ही इज लाइक अ फादर ऑफ द कंट्री, मतलब वो एक उस हैसियत में भी बुला सकते हैं, लाइक अ विप मास्टर ही कैन स्पीक टू हिज पीपल, लाइक अ फादर ही कैन स्पीक टू हिज नेशन, और एक वालिद के पास इख्तियार भी होते हैं, गो हमने 58(2)(b) के बाद सारे इख्तियार खत्म कर दिए, लेकिन फिर भी ही कैन टेक ड्यू कॉग्निजेंस ऑफ द सिचुएशन एंड आस्क एवरीबडी टू पुल अप देयर सॉक्स। सदर पाकिस्तान है, एक अदारा है, और उनकी अपनी शख्सियत भी, मेरा ख्याल है मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं जी, उनकी एक शख्सियत ऐसी है कि जिसमें उनको आप एक वो एक अपना इम्तियाज रखते हैं, उसका मेरा ख्याल है उनका उनका मकसद है ये।
आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि क्या समझते हैं कि जो खींचातानी है, गलत बयानी, आज इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान पहुंच गया, अल जजीरा कवरेज दे रहा है, पाकिस्तान के अपने इदारों को जो टेलीविजन के इदारे हैं उनको रोक दिया गया है पैमरा की तरफ से, यानी और झूठ का प्रचार जब हो रहा है, जबकि मजमा जमे गफीर लोगों का शहरों में आपको नजर आ रहा है, अगर ये इसी तरह से पिंडी पहुंचते हैं और पिंडी में थर्ड पार्टी एडवांटेज लेना चाहती है, डू यू थिंक और कितने परसेंट आपकी तवक्को है कि इमरजेंसी आ सकती है या मार्शल लॉ आ सकती है?
देखिए सारे मैंने आपसे बहुत पहले बात शुरू की थी जी, इस हकीकत को तस्लीम कर लें जी, और इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल हल है, अनफॉर्चुनेटली
हल क्या
है? इलेक्शन कराएं।
जरदारी साहब कहते हैं जब तक हम ये पांच चगाम हमारे नहीं हो जाते इलेक्शन,
वो तो हर कोई बहुत बातें करेगा। मैं देख रहा हूं ना जी कि जिसके हाथ में है, who holds the reins of the country today, say let's be very honestly,
thank you very much,
it's a national call. main guzarish karta hu ki why things are pushed, main pakistan ka ek shehri hu ji, maine bhi wardi pehni hui hai, shayad unse pehle pehni ho, hamara bhi ek sawal hai ki kyun, why things are being pushed to this extent, why is itne nizam mein itni ambiguities kyun hai? Arshad Shareef ke case mein aapke samne hai, जब देखें ना आपने अभी वी लॉ की बात की, देखिए मफरूजों की गुंजाइश क्यों इतनी छोड़ी जाती है जी, एक क्लियर कट स्टांस क्यों नहीं आता?
कवर अप्स में आपने चीजों को बिगाड़ लिया। आखिरी सवाल मेरा आपसे जो है, आप वाकई मुझे आपसे बात करना, ये नहीं कि हर के साथ हम उनका अंदर से पॉइंट ऑफ व्यू निकलवा के लेके आते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का टाइम दे दिया है, अगर खुदा न खास्ता मुल्क के हालात खराब हो जाते हैं और अगर प्रॉब्लम आ जाती है और इमरजेंसी आ जाती है या मार्शल लॉ, तो वो सारा कुछ नल एंड वाइड होगा, जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फिर कैरी कर सकते हैं।
मेरी ये एडवाइस सुनी यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है, मैं इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आपको पहले कहा था कि आप एक प्रोग्राम कीजिए सिर्फ ये जो 6 महीने में पाकिस्तान का सफर है इसके ऊपर, क्या खोया क्या पाया, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ही मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो, अगर मैं पाकिस्तान का तालिब इल्म हूं तारीख का, तो ये पाकिस्तान में आरफा बहन पहली दफा हो रहा होगा कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बाद, ये मेरी स्टेटमेंट है, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बाद पाकिस्तान की अवाम उन्नास इलेक्शन मांग रही है, फौज नहीं मांग रही।
हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा आर्मी को वेलकम किया।
राइल शरीफ का साहब का था, मेरा ख्याल है कि 3 एजेंसीज का सर्वे था और गालिबन मेरा ख्याल है तीनों का 80%+ था। ये पहली दफा हो रहा है। मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं कि हम जितनी बात भी करते हैं पाकिस्तान के माजी की करते हैं, उस तारीख को मदर, कोई शक नहीं तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक तो आप, क्योंकि आपके प्रोग्राम का टाइम मुख्तसर है, लोग कहते थे कि कभी भी ये जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से हुकूमत नहीं चेंज होती, हुई कि ना हुई, वो कुछ न्यू हिस्ट्री इज बीइंग रिटन इन पाकिस्तान टुडे। ये जो मैंने आपसे बात कही है,
ये मैं स्ट्रेंथन पाकिस्तान,
जी बिल्कुल, वी आर इमर्जिंग अ फास्ट, ये बिल्कुल हम इस टर्मोइल से गुजर रहे हैं, देयर इज अ बिग प्राइस व्हिच यू आर पेइंग फॉर ऑल दिस, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं या जो हमारा नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है, मैं अपने तमाम सुनने वाले सामईन को और बिलखसूस जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मोहब्बत और प्यार का जज्बा रखते हैं, बासकात हम इसमें डिसऑरिएंटेड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वी शैल इंशाल्लाह इमर्ज एज ए मच स्ट्रॉन्गर एंड बेटर पाकिस्तान। और बिलखसूस मैं उन तमाम दुश्मन अनासिर को भी पैगाम देना चाहता हूं, हमारे हमसाए वतन की हम उनको कहते हैं हमेशा, वो उनकी तरफ से जो खुशियां मना रहे हैं, दे शुड फॉरगेट
सेलिब्रेटिंग
पाकिस्तान नाम ही रिलियंस का है जी, वी शैल ऑलवेज इमर्ज आउट टू बी स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। आप देखिएगा ये जो हमारी कौमियत की तरफ हमारा सफर है, कदम मुझे सेंगल से न लीजिए कि मैं कोई इमरान खान या पीटीआई हो सेंटीमेंट की बात कर रहा हूं। अब ये जो सेंटीमेंट है पाकिस्तान में हुक्मरान से अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है, डजंट मैटर वेदर पीटीआई इज इन गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और एनी पार्टी ऑफ, अब वो ना सवाल करेंगी जी, ये जो था ना वोट डालो लो एंड स्लीप ओवर इट, अब वो बात खत्म हो गई जी। ये शोर इस शोर में बिलखसूस पाकिस्तान का वो तबका शामिल हुआ है जो इतना बड़ा एडिशनल चंक है, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में कभी अमलन किरदार नहीं था अदा किया जी। तो जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आपने बात अभी फरमाई थी जी कि अगर हो और ये सब कुछ हो जाए, ये एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल जी। अब आप देखिएगा मासिस का, और अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन हो जी।
थैंक यू तनवीर सुल्तान साहब, आप भी बेशक तशरीफ रखिएगा, हमारी अगली कॉल ऑन द वे है और हमारे मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन इन कैनेडा शॉन फ्रेजर, ही इज विद अस, ऑनरेबल मिनिस्टर इज विद अस। मिनिस्टर, इमिग्रेशन के लिहाज से जो तब्दीलियां हुई हैं उसके लिहाज से सवालात होंगे, आई वुड रिक्वेस्ट शाजिया आल्सो टू ज्वाइन, माजी जमाल इज हियर टू ज्वाइन, माय ऑनरेबल,
ऑफ कोर्स आरफा जी, थैंक शॉन फ्रेजर, ऑनरेबल शॉन फ्रेजर, मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप इन कैनेडा, एंड ही इज विद अस। हाउ आर यू मिनिस्टर, हाउ आर यू डूइंग?
I'm doing very well. Thank you so much for the opportunity to connect this afternoon.
Okay, my name is Abdul, and Arifai is here, and Shazia is here. The whole team is here.
So, it will be a little difficult time. Thank you very much for joining us, Honorable Minister. And, of course, now Shazia is also joining.
Now,
yes, Shazia.
The new announcement that what she did yesterday, very interesting, 500,000 refugees for next 3 years. Could you put some light on it?
Sure. And just to clarify, it's 500,000 new permanent residents, which would include not only refugees, but family members who are seeking to be reunited, as well as people coming for economic reasons to become permanent residents to Canada. The reality is that Canada needs more people. We need more people for economic reasons to help fill gaps in the labor shortage, but we also need people for demographic reasons. You know, 50 years ago, there was 7 workers for every retiree, and now, 10 or 15 years from now, we're on pace to only have 2. If we continue on this trend, we're going to not be talking about labor shortages, but we'll be talking about whether we can afford schools and hospitals, because we won't have the workforce that'll be able to fund them. So we tabled the new immigration levels plan for Canada yesterday in the House of Commons that will increase our ambition. So we will work up to 500,000 new permanent residents per year by 2025. It's going to help us bring workers into the economy, reunite families more quickly, and continue to allow Canada to be a world leader on resettling some of the world's most vulnerable refugees.
Is there any priority for the reunification? For example, if the, by the time when the parents, they applied for their immigration, they came here and they couldn't apply for their adult daughters and sons, would they be able to apply for them to get the immigration as well? Or it's only opposite, like children can bring parents?
So there's a number of different family reunification programs. The first is the Spouses and Children Program, and we've created enough spaces in the immigration levels plan to satisfy the expected demand of the program. We have nearly 80,000 applications that we expect to get on an annual basis. But in addition, we also have the Parents and Grandparents Program, which allows people to bring their parents and grandparents as well as their dependent children. And we're increasing the number of spaces in that to allow more families to be reunited, to have tens of thousands of families be reunited in Canada every year. But we're also making changes to certain temporary programs that will help families be together while they wait for their permanent residency to be processed. We made some major changes to the Super Visa program recently that will extend the possibility of a person to come under that program for up to 10 years, so they can be in Canada while they're waiting for their parents and grandparents' application to go through. Similarly, next year, we plan to advance a new spousal reunification temporary visa that will allow people to be here with their spouse while they wait for their family reunification process to play out. This is a big change. It's going to allow more people to be with their loved ones here in Canada, and I'm very excited to see that it's moving forward.
I don't know if you want to make a comment on today. Quebec Premier Francois Legault said that he's not willing to take any of these 500,000.
It's the arrangement that we have with Quebec allows Quebec to set its own immigration levels. So it's up to Quebec to set their own immigration levels. But it's the federal government's job to set the levels for the rest of Canada. We want to make sure that we continue to welcome newcomers to meet our economic and demographic needs. But Quebec has the ability to select every newcomer who's coming for economic reasons. But it's a decision that we've made to help make sure that businesses have access to workers and to help bring families into our communities, that we want to continue to be a welcoming country. And I'll leave it to Quebec to make decisions that are their responsibility. But my view is that more people in Canada is not just a good thing, it's essential for our economic well-being.
100% I agree with you.
Thank you very kindly. My one question is, Minister, it's a beautiful, diverse country, and whoever see once they come to Canada, so we are Canadian, no matter what. But again, we do have our roots back home as well. I haven't seen so many Pakistani students coming here. And is there any chance that, what is the reason that not so many Pakistani students, don't they have access to the application or to the programs in these universities? What is the reason there are, I don't see so many Pakistani students in the in our universities?
The Pakistani students who come to Canada make extraordinary contributions to our communities and to our economy. And from my point of view, it's a wonderful thing to continue to embrace international students from all over the world, including Pakistan. We've seen some real challenges with processing during the pandemic and since the pandemic because of the pressure that's been put on our immigration system. We've seen similar pressures on work permits and on visitors' visas as well, for what it's worth. I actually met with the Pakistani High Commissioner earlier today to discuss this issue, among other issues. And we want to continue to improve our processing times so students can wait less time to be able to come to Canada. But we also have some work to do to see if we can improve our overall approval rates. We added not too long ago Pakistan to the list of countries who benefit from the student direct stream. But we need to continue to make decisions like that to make it easier for people to get to Canada. We also are looking to create a pathway to permanent residency for international students. It's a mandate letter commitment that the Prime Minister gave to me. And we're right now looking at the particular role that the provision around dual intent has that says you can't come to Canada as a student if you're not likely to go home at the end of your studies. We know that a lot of students that want to come here to study might actually want to stay, and that could be a good thing for Canada. So we're doing the work right now to figure out the right solution to ensure more students, including from Pakistan, can come to Canada and be approved to study at our colleges and universities.
Mr. Fraser, your bromance with Mr. Jamal and Ms. Arifa is over, so some real questions now. Okay. Now, Mr. Fraser, this is Shazia Malik, and I'm the associate editor here. There are a number of things that I want to talk to you about if the government is aware of these things. Okay, 500,000 people in Canada, very good. You talked about labor shortages. I personally think there is no labor shortage. There are people in the country, but just because the companies in Canada, unlike U.S., are not ready to pay them properly, they don't hire them, and so people prefer to sit at home, number one. Number two, there is definitely a scarcity of doctors and nurses in the healthcare sector. If you have talked to the Pakistani High Commissioner, you should know that even with this devastating floods in Pakistan, the healthcare system in Pakistan was up and running. So you can have a lot of doctors and nurses from Pakistan if you wish to. Number three, I have heard Liberal government talking about students coming over because they think that they can, add up to the, a lot to the economy of this country. Perhaps you are not aware, or the government is aware, that some of the students, they only come with about $5,000 or $6,000 in this country, and then they earn in this country and then pay their fees and even send back to their parents. So in fact, they are not really very economically viable for this country. So are you aware of all these scams and things that are going on? So my question is, there is labor, but because the companies are not paying them well and not giving them benefits, just like the U.S. companies have done very wisely. Number two, the student scam that they show you on papers back home that they have a lot of money here. When they come, they don't have any. And then number three, are you getting workforce from, like, the doctors and nurses from Pakistan? Is there any talk on that? So three things.
Sure, and look, your first and third question seemed similar to me, so if I leave something out, I'll count on you to correct me. But first, on the healthcare issue, we made a major change to the express entry system that's going to allow us to select economic newcomers based on the sector that they are working in, and we plan to consult with provinces and territories and industry to figure out how we can best welcome healthcare workers specifically as a result of these new powers that we've built into the express entry system. In addition, I made a decision recently to make a change that now makes physicians eligible to come to Canada, even if they're self-employed, which was previously not the case. And a lot of physicians, in fact, work on a fee-for-service basis in Canada, which renders them self-employed, and until very recently, they were not eligible to come through the federal express entry stream. When it comes to the students issue, we made a decision recently to increase the number of hours that students can work, which will help them support themselves. But that's not the only issue that we need to tackle when it comes to international students. My view is that international students bring a wealth of talent and make immense contributions to Canada, but some of them are being taken advantage of. Some of them are being given bad information before they come to Canada about what they should expect when they're here. We have made changes to regulate the profession of immigration consultants within Canada so we can better monitor their activities and ensure that we protect newcomers. But we have a real problem with promoters from all over the world who promise many things to potential students that are not in fact true. And we need to continue to share as much information as we can within the countries where we see large numbers of applicants so people can count on information that comes from the government of Canada. It's not easy for us, of course, to crack down on bad behavior in a jurisdiction outside of our borders, but we're going to continue to work with our partners on the ground in countries, including Pakistan, to ensure that we're giving good information about what students can expect when they land in Canada, so their experience will be better and they'll be in a position to support themselves when they arrive.
Okay, Minister, one very big concern that was about the labor shortage that you have not really answered. So would you like to shed some light? And then I will ask the next question.
Okay, look, on the labor shortage piece, this was a big part of the motivation to continue to increase our immigration levels. We recently had one of the strongest economic recoveries of any advanced economy in the world from COVID-19, but we also, despite having the lowest rate of unemployment in recorded history in Canada just a few months ago, we also had nearly a million jobs open in the Canadian economy. We have needs for people who know how to build houses, who can work in the skilled trades, who can work in healthcare, who can work in transportation. And by increasing the overall immigration levels and making changes to the express entry system that will allow us to select newcomers based on the needs of the labor market in the short term and the long term, we're going to be able to help contribute a solution to this labor shortage and protect the interests of Canadian businesses and the Canadian workers who have a job with those businesses. We believe immigration is a major economic contributor, and that's the main reason why we continue to advance our immigration levels, because we believe it's good for the Canadian economy.
No, my question still is not answered, but that's all right. My question was that just because the Canadian companies are not paying the people well, that's why people prefer to sit at home, unlike US, where they are giving a lot of fringe benefits and they have increased the salary structure. That's why people are in the workforce. Okay, no problem. My next question.
Well, look, I'm sorry. I do have another appointment immediately, so I must go. But let me just conclude on the question that you did answer. Right now, very recently, Canada's rate of unemployment was at the lowest level ever recorded. I want to be careful to make sure people don't think that everyone is just sitting at home. There are more people working today than almost at any point in the history of Canada, and employers still need to find workers. Certainly, I believe we need to continue to push employers to pay people more, but right now we are seeing more people working and earning a paycheck in Canada than almost at any point in Canadian history.
You are right. Absolutely right. And Minister, I thank you very much for, Honorable Minister, I thank you very much for being with us. I request, please, once you come to Toronto, get a chance to come visit the station and give us, once you are bringing more students in, give us a chance to convey this message to different countries so those who can afford and come here for, especially for the studies and contribute to this system, give us a chance to announce that information so that right students can come with the finances, looking after their education, paying to the university, and become a useful member of this community. Sir, thank you very kindly, and we look forward to seeing you here in our studio once you arrive here in Toronto.
I'll look forward to the opportunity one day very much. Thank you so much. Wonderful afternoon.
Take care. Thank you very kindly.
कुछ स्पॉन्सर्स का पैगाम लेते हैं, पुराने वापस आएंगे 416-620-1778 हमारा फोन।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM, यंगस्टाउन टोरंटो।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब, लाओ जी तीजी लोकेशन भी खोलती आ, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी, आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी, क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com, QTL, बिकॉज वी केयर।
जॉर्ज ब्राउन कॉलेज लेकर आ रहा है एक ओपन हाउस अपने तीनों ही डाउनटाउन कैंपस में। इस ओपन हाउस में आपको कॉलेज से मुतालिक मालूमात और स्टाफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। ये ओपन हाउस हफ्ते को 5 नवंबर सुबह 10 से 2 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा आप रजिस्टर कर सकते हैं georgebrown.ca/openhouse।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000।
Gateway Chevrolet in Brampton has announced a limited-time special offer on Chevrolet and GMC. Are you ready to drive into fall? 2.99% finance rate for up to 72 months on pickup trucks and excellent financing options on SUVs and crossovers. Eligible Costco members receive a $750 bonus on select vehicles. Reserve your factory order with Gateway Chevrolet now and get a $500 cash bonus. Come to Gateway Chevrolet at 2 Gateway Boulevard today, Queen Street and Airport Road in Brampton. Call 905-791-7111 or gatewaychevrolet.ca.
ਪੌਲ ਆ ਗਿਆ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੰਬੀ ਸੈਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਾਲਸ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਨਸਰਟ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਤੇ ਵਾਈਨ ਟੇਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਝੜ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਫਾਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਟੇਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 20% ਬੈਕ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ destinationontario.com
ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਪੌਲ ਕੌਫੀ ਅਰੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਰੀ ਤੇ ਗੋਰਵੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 437-423-2669।
ब्रैम्पटन फायर और इमरजेंसी सर्विसेज खाना बनाते वक्त हमेशा बावर्ची खाने में रहने की याद दहानी कराना चाहते हैं। ध्यान बटाने वाली चीजें खाना बनाते वक्त दूर रखें, इसमें आपका सेल फोन या टीवी शामिल हैं। अगर चूल्हा चल रहा हो और कमरे से बाहर जाना हो तो चूल्हा बंद कर दें और बर्तन या हांडी को उतार दें। अगर नींद आ रही हो या शराब या भंग के जेरे असर हो तो कभी खाना ना पकाएं। ऐसी चीजें जो आग को पकड़ सकती हैं चूल्हे से दूर रखें, जैसे कि गर्म बर्तन पकड़ने वाले दस्ताने या कपड़े, लकड़ी के बर्तन, फूड पैकेजिंग, पेपर टॉवल। और इस बारे में BramptonFire.com पर जाकर मजीद मालूमात हासिल करें।
लाओ जी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी आला ते सब तो पुराना फर्नीचर स्टोर सोडी फर्नीचर रेनोवेट होण लगे है, जिस करके फर्स्ट टाइम इन सोडी फर्नीचर हिस्ट्री लोएस्ट फिक्स प्राइसेस सेल लग चुकी है। कोई भी फर्नीचर स्टोर विच ना रहे, इस करके सारा फर्नीचर है लोएस्ट फिक्स प्राइसेस ते।
अपने रेजिडेंशियल फर्नीचर दी खरीद तो पहला सोडी फर्नीचर दे शोरूम ते एक बार जरूर विजिट करो। 142 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन। कॉल 9058747171।
जी साहब, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से खुश आमदेद कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों के साथ शमूलियत का। जनाब तनवीर सुल्तान साहब से हम खुदाफिज करते हैं। हमारा इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर साहब की जो गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी, ये इंटरव्यू हमारे फेसबुक पे भी मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। अपने दोस्त अहबाब को बताइए, अगर आप किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं बर वक्त एप्लीकेशन डालिएगा। बर वक्त, बाज़ोकात ये होता है कि हम सोचते सोचते में ट्रेन को गुजार दिया करते होते हैं। फेसबुक पे और यूट्यूब पे जब ये हमारा अंग्रेजी का इंटरव्यू आप देखेंगे तो आपको सबटाइटल अंग्रेजी में ही मिलेगा। आई डोंट नो कि उर्दू की ऑप्शन शायद ना हो, लेट मी ट्राई इट, मगर इंग्लिश सबटाइटल के साथ जनाब शान हमारे ऑनरेबल इमिग्रेशन मिनिस्टर का इंटरव्यू आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ मिलेगा, ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने किसी को बुलाना है, इट्स अ टाइम एंड डिले मत कीजिएगा। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को, आमिर का काम भी बढ़ेगा, हमारे उसी सेगमेंट के साथ जुड़े। जनाब तनवीर साहब, तनवीर सुल्तान साहब, आप कंक्लूड कीजिए अपनी गुफ्तगू को। पाकिस्तान का अल्लाह हामी और नासिर रहे, और अल्लाह करे कि हमारा सवाल जो आपके साथ आखिरी चल रहा था ना, वो ये था कि क्या आर्मी में, या अगर आखिरी 6 दिन के बीच में सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, गो के जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने अपनी रिटायरमेंट का एक टाइम कांदिया दे दिया हुआ है, तो उसमें तब्दीली लाने के बाद इमरजेंसी या मार्शल लॉ के कितने चांसेस?
इस पे अल्लाह ना करे कि ये हो जी, अल्लाह ना करे कि हम थोड़ा सा सफर आगे करते हैं फिर हम वी आर बैक टूवर्ड्स मार्शल लॉ, अल्लाह ना करे। पहली सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा जी। दूसरा, जो आपने बात फरमाई ना जी, ये बड़ा ट्रिकी है आपका सवाल भी और इसका जवाब भी, कि क्या उनका टेन्योर कंप्लीट हो रहा है, क्या अपने टेन्योर के कंप्लीट होने के वक्त पे वो ऐसी चीज करेंगे या उनका सक्सेसर ये करेगा, کیا ذرا دو منٹ کے لیے میری ذرا
29 کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے
جی
10 تاریخ تک اگر یہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے ملک میں کیوس ہے تو اٹس ود ان ہز ٹائم
یہ اب آپ کا کوشچن زیادہ کلیئر ہے اب گزارش یہ ہے کہ 29 سے پہلے کیا تبدیلی آ جائے گی لیٹس سے سچویشن اسیوم لیٹس اسیوم کہ سچویشن ریمینس ٹو بی دا سیم اور نئے چیف کی آرمی چیف کی تقرری ہو جاتی ہے یہ بھی سچویشن میں ابھی آتا ہوں نا جی ایک سیکنڈ اینڈ دا نیو آرمی چیف انہیریٹس دس سچویشن آپ نے یہ کیسے پریزیوم کر لیا کہ باجو صاحب آپ دو منٹ کے لیے اگر ہم کہتے ہیں کہ اے پولیٹیکل ہیں تو دین ٹینیور شوڈ ناٹ میٹر یہ تو ایک ملک کے حالات ہیں ریسپیکٹو دے شوڈ کنٹینیو اینڈ
اگر گولی چل جاتی ہے دیکھیے 10 تاریخ تک انہوں نے ارائیو کرنا ہے اسلام آباد میں سے اگر تھرڈ پارٹی ایڈوانٹیج لینے کے لیے بد نظمی ہو جاتی ہے افراتفری ہو جاتی ہے مارا ماری کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے تو باجوہ صاحب تو
میں دوبارہ اس بات پہ آ رہا ہوں ہاؤ شیور یو آر کہ 10 کو یہ پہنچ جائیں گے ہاؤ شیور یو آر کہ 10 کو یہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے میں نے اس لیے آپ سے گزارش کیا تھا کہ جو حالات ہیں اور حالات کے جو ڈائنامکس ہیں آج عمران خان صاحب کی آئیے آپ سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا کہ 9-10 مہینے بھی چلنا پڑا تو یہ مارچ چلے گا تو میں نے آپ کو اس لیے گزارش کیا کہ ہم بہت ساری چیزیں اپنی اسمپشنز پہ
کنٹری تو بہت پیچھے چلا جائے گا
یہ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا کمپلیکس آئی ہوپ سو اسی لیے میں نے پہلے وہ بات کی اللہ کرے کہ چونکہ ڈیفیکٹو تو نیچرلی دا شارٹس آر بینگ کالڈ فرام دیئر تو اس پہ کوئی فیصلہ وہ کریں اور اب اس فیصلے پہ ضد سے بالاتر ہو کے ہم سب لوگ نیشنل انٹرسٹ کو سپریم رکھیں جی اور حل ہے جس طرح میں گزارش کروں کہ ہمارے پاس ایک آئیں بعض کا تو آپ واقعی ایسے کرائسس میں آ جاتا ہے ملک کہ کوئی آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل حل نہیں ہوتا ابھی بھی یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس وقت بھی حل ہے اور میں
کیا حل ہے
الیکشن آج ڈیفیوز ہو جائے گی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے بھلے الیکشن میں کہتا ہوں 6 مہینے بعد ہوں بھلے الیکشن 6 مہینے کے بعد ہوں یہ ایک دفعہ ڈیفیوز ہو جائے گی ساری سچویشن ادروائز
کریڈیبلٹی کیا ہے کہ اگر 6 مہینے کے بعد کہہ کے الیکشن نہیں کرے
آپ ابھی اپنے سوال پہ دوبارہ آئیے ٹو سبسٹینشیٹ مائی کنٹینشن میں اس کو اب آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ اپریل آنورڈ حالات کس طرف چلتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں تھینک یو اب کیا آپ کا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے یا فورسز ٹو بی نے کیا ایسے چاہا تھا کہ ایسے ہو جائے
Never expected.
Thank you very much. میں اسی لیے آپ کو کہا میں دوبارہ آپ کو 6 مہینے کے حالات کے تجزیے کے اوپر لے کے جاؤں گا نہیں ہوا نا اور ابھی بھی اگر آپ ہوتے ہیں نا کہ چلیں آپ کہتے ہیں کہ بات سنبھل رہی ہے اگر آپ کو وہ بھی امید ہوتی دونوں ایسپیکٹ پہ کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ اگر پرفارم کر جاتی یا آپ کو پرفارمنس کے کچھ شروعات نظر آنی شروع ہو جاتی پھر بھی کچھ آپ کو حوصلہ ہو جاتا وہ ساری چیزیں ایوری ایفرٹ از بینگ از کاؤنٹر پروڈکٹیو جی تو پھر کیوں نہ ایک مثبت حل کی طرف جایا جائے ضروری ہے کہ وی ہیو ٹو پش تھنگس ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جب آپ کو دیکھیں نا ایک ٹریک ہے ایک ریکارڈ ہے آپ کے پاس یہ 6 مہینے کا ان کو دیکھ لیجئے کہ ٹرینڈ کیا ہے ہاں کوئی معجزاتی چیز ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا جب حالات کو آپ تجزیہ کر کے انالائز کر کے نیچرلی جو آپ فور کاسٹ کریں گے وہ تو ایک پروجیکشن ہوئے گی لیکن پروجیکشن کو اگر حقائق اور دلائل پہ بنیاد اس کی بنائیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز چونکہ ایک چیز آج پاکستان میں واضح ہو گئی ہے جہاں پہ بہت سارے نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں کہ ایک ایسی پولرائزیشن ہے جس میں بڑا واضح ایک موقف ہے چاہے جس اینڈ کا بھی ہو موقف بڑا واضح ہے اور ان نمبرز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے یا تو آپ کہیں نا نمبرز کو نہیں بلیو کرتے دو الیکشنز آپ نے ان بٹوین اور الیکشن کا بھی میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ یہ الیکشن کہتے ہیں اس کے نتائج ہم تو نیٹ نتیجہ دیکھ رہے ہیں نا جی ان الیکشن میں جو اس کے پیچھے فورسز تھیں ٹو سپورٹ دا پریزنٹ گورنمنٹ وہ آپ کے سامنے ہیں تو جو اصل تجزیہ کرنے والے ہیں ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ ود آل دا ایفرٹ پٹ ان یہ نتائج ہیں یہ الیکشن نہیں ہے جی یہ پاکستان کی ورڈکٹ ہے یہ ریفرنڈم ہے
عوام کا
میں ایک سوال کر سکتا ہوں
جی بھائی صاحب
دیکھیں یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے اور دنیا بھر میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جو دیکھتی ہے کہ پولز کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کا اس وقت کس طرف رجحان ہے
جی.
اگر وہ پولز میں بہت ڈاؤن ہیں تو وہ اسٹریچ کرتے ہیں ایز لانگ ایز
جی
اس کے بعد میں الیکشن کراؤں گا تاکہ ہمارے نمبرز بھی اوپر آ جائیں کچھ فائٹنگ موڈ ہو کچھ جی. نا تو ابھی تو اگر آپ پاکستان میں پول کروائیں تو میرا خیال ہے کہ 80% to 20% ہوگا.
چلیں اس نا اسی کو بھی اس آپ کی اس کنٹینشن کو بھی اگر میں لے لوں
تو اس وقت جو ہے سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وائی وڈ دے گو فار دی الیکشن.
بھائی یہ بتاتے ہیں مجھے آپ بتائیے کہ لیٹ سے 6 مہینے میں آپ ہی کو بھائی سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ لیٹ 6 مہینے میں بالکل اکیڈیمیکلی ان بایس ایک مجھے رائے بتائیے آپ کو کیا اچھی چیز نظر آ رہی ہے واٹ دا گورنمنٹ شوڈ کاؤنٹ اپون ماس وائے کہ اپنے اور کیسز ختم کرا لیں. نیشنل انٹرسٹ میں کون سی ایسی چیز وہ کر سکتے ہیں جس کا آپ کا خیال ہے کہ ان کا گراف بڑھے اور عمران خان کا نیچے جائے؟ ایک چیز مجھے گن دیجیے.
فورن ایڈ, فورن کی باہر کی جو پیسہ آئے گا چاہے وہ سعودی عرب کا ہو چاہے ویسٹرن گورنمنٹس کا ہو چاہے امریکہ کا ہو, دل تھرو ان بلینز آف ڈالرز ان دیئر ٹو برنگ دا اکانومی.
سر مجھے بتائیے نا وہ پیسہ کہاں پر ہے
آئے گا.
نہیں نہیں بتائیے نا ابھی بنا بات کیجیے. ابھی ہمارے فائنانس منسٹر گئے تھے باہر امریکہ سے, مجھے بتا دیجیے کیا لے کے آئے ہیں.
سر آج کی ایک نئی ڈیولپمنٹ میں پاکستانیوں کو سب کو کہتی ہوں, اس ڈیولپمنٹ کے اوپر غور کریں. آپ کو پتا ہی ہوگا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ امریکہ کا پرابلم زیادہ بڑھ گیا جب اوپیک میں انہوں نے آئل کی پروڈکشن کم کی تو انہوں نے کہا کہ رشیا کی طرف جھکاؤ ہو گیا تو اس پہ سینکشنز لگنے کا کہا. سینکشنز میں انہوں نے کہا ہم اسلحہ نہیں بیچیں گے ان کو. جمال خاشقجی صاحب, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کا کیس دوبارہ سرفیس کر گیا. انہوں نے کہا ہم اسلحہ نہیں دیں گے, اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی فوج کو بلا لیں گے. سعودی عربیہ کو اس فوج کی بھی ضرورت ہے, سعودی عربیہ کو اسلحے کی بھی ضرورت ہے. کل رات کی خبر ہے, اٹس اے ویری, میں کوئی پاکستانی میڈیا سے خبر نہیں لی, اوتھینٹک نیوز آپ کو دیتی ہوں. سعودی عربیہ کی ریزرویشن ہے کہ ایران اب اٹیک کرے گا سعودی عربیہ پہ. ڈیڈ یو ہیو دس نیوز؟
نہیں مجھے یہ تو نہیں جی کہ اٹیک.
یہ سر کل کی اٹیک کی نیوز آ گئی. اب سعودی عربیہ کیا کرے گا؟ سچویشن از ویری اسٹرینج ناؤ. دنیا کی بدلتی حالات کو دماغ میں رکھے میں اس نیوز کو نکالتی ہوں. وال اسٹریٹ جرنل کی خبر ہے سر, میں رات یہ نیوز پڑھ رہی تھی. یہ وال اسٹریٹ جرنل نے کور کیا ہے کہ ایران از ایکسپیکٹڈ ٹو اٹیک سعودی عربیہ. میں کہتی ہوں مسلمان مسلمان سے ٹوٹا ہوا ہے. دس از دا ٹائم جب سعودی عربیہ اگر پنش ہو رہا تھا نا تو ایران تو آلریڈی سینکشنز کے اندر تھا, ایران کو چاہیے تھا خاموش رہتا. اس وقت میں اگر سعودی عربیہ کو وہ کریں گے تو سعودی عربیہ ڈیفینیٹلی نیڈ امریکہ.
اس پہ میرا آپ سے سوال ہے کہ ایرانین افیشل بیان کیا ہے اس چیز کے متعلق؟
سر وال اسٹریٹ جرنل نے کور کیا, اب آپ اس کو.
وال اسٹریٹ جرنل کی کس کی رپورٹنگ کس کی ہے؟ یہ رپورٹنگ ہے, کسی کا تجزیہ ہے, انالیسز ہے کہ ایران کی گورنمنٹ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے؟
ناٹ ایرانین گورنمنٹ سٹیٹمنٹ, نیوز پیپر نے اپنا دیا.
یہ میں یہیں پہ, ابھی آپ نے بہت شروع میں ایک بات کہی تھی کہ ہم بلڈ اپ کر لیتے ہیں جی. میں آئی وڈ لائک ٹو لسن, بڑی میچیور ہے ایران کی گورنمنٹ جی, بڑی میچیور اسٹیٹمنٹ آتی ہے ان کی. آئی وڈ لائک ٹو لسن فرام دیم کہ وہ کیا کہتے ہیں جی.
ابھی اس کیا ان کی طرف سے کوئی ورڈکٹ؟
تو میرا خیال ہے کہ جب تک وہ نہیں آئے گی اٹ بی پری میچیور ٹو میک اینی.
اٹس اے پروپیگنڈا.
او بہت کچھ جی,
اٹ از اے پروپیگنڈا ٹو پٹ انادر پریشر ٹو سعودی عربیہ.
کچھ ہو سکتا ہے.
شازیہ براٹ دس نیوز. دی وال اسٹریٹ جرنل نیوز پیپر فرسٹ رپورٹڈ آن سعودی عربیہز شیئرنگ دی انٹیلیجنس ود دی یو ایس ارلیئر آن ٹیوزڈے. ایران فارن منسٹر اسپوکس مین نصیر کنانی ریسپونڈیڈ ٹو دی رپورٹ آن وینسڈے بائی کالنگ اٹ بیس لیس. ایران نے جی بیس لیس کہہ دیا. ایران نے کہا ہے, ایران نے کہا ہے کہ اٹ از اے بیس لیس اینڈ ایمڈ ایٹ دا تہران کا ریلیشنز ود اٹس نیبرز. دا اسلامک ریپبلک آف ایران کنسیڈر دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ امپروومنٹ آف دا اسٹیبلٹی اینڈ سیکورٹی ان دا ریجن ٹو بی پاسبل تھرو کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ود دا نیبرز اینڈ ول پریشر اٹ سیریسلی. اب وال اسٹریٹ جرنل نے اس کو کور کیا ہے. دیکھیں امریکہ کا میڈیا ایسا کلاسک میڈیا ہے کہ دے ڈو پروپیگنڈا فار دیئر کنٹری.
اب میں یہ گزارش کرتا ہوں جی, میں یہی کہتا ہوں کہ یہ جو تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے متعلق بات ہو رہی تھی, آپ نے بات شروع کی تھی, وی شوڈ بی ڈیولی کاگنیزنٹ جی, کوئی بھی جو چیز ہو اس کو کوالیفائی کریں جی. میرے لیے بہت آسان تھا, میں آپ کے 10 منٹ اس کے اوپر تشریح کرتا کیا تھے حالات کیا تھا بات, لیکن میں میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ چیز ایکسیپٹ کرنا. ایران از اے ویری ریسپانسبل کنٹری جی, ویری ریسپانسبل مینجمنٹ جی, ویری میچیور مینجمنٹ فار دیم. اس سے پہلے برو ہوئیں گے, کوئی آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں ایسے
of course, they are not very comfortable amongst their relationships between Saudi Arabia and Iran. Lekin aisi koi baat main mujhe offing mein aisi koi baat nahi nazar aati ki jisme main ye samjhu ke jitni der tak Iran government ki aisi qualified
Iran ki ek reservation hai kyunki Iran mein aapko pata hai ye protest shuru hui thi. Iran ye tasavvur karta hai ki un protest ke behind Saudi Arabia was playing a role.
Ab ye baat ye aaya hai. Ab dekhe na usko kaun kaise play kar raha hai, ye ek apni jagah pe ek puri kahani hai. आजकल आपको फिर बहुत सारी वीडियोस नजर शुरू आनी हो गई होंगी कि लोग हैं जो आप देखेंगे सारे पेंट शर्ट वाले हैं जो अपना वायतोला का एक ड्रेस होता है जी टोपी और उनकी पगड़ियां उछाल रही हैं और ये वो कर रहे हैं तो ये मोटिवेटेड है जी ये ऐसे नहीं है ये चीजें हुई होंगी लेकिन किसी भी चीज को किसी प्रपोर्शन से बियॉन्ड ब्लो करना डेफिनेटली मोटिवेटेड इंटेंशन होती है जी.
मैं तमाम लोगों से ये कहती हूँ कि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जरूर देखें और अगर ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज जो कवर किया है और उससे पहले ईरान में जो डिस्टर्बेंस है आप लोगों के वो भी नोटिस में है तो साहब अगर सऊदी अरेबिया के साथ ये हालात हो सकते हैं एक मुल्क की दूसरे मुल्क के जरिए ईंट से ईंट पे जाई जा सकती है तो पाकिस्तान तो घिरा हुआ है अपने इर्द गिर्द मगरिब में भी और मशरिक में भी जो इस सल्तनत के साथ जो सलूक करना चाहते हैं तड़ी लगाने को मैं और आप यहाँ बैठ के तड़ी लगा सकते हैं मगर मटेरियल फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड आर डिफरेंट. सर आपको बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस. प्लीज स्टे ट्यून्ड. हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे स्पॉन्सर्स को जरूर तावन दीजिएगा एंड इफ यू वॉन्ट टू स्पॉन्सर दीज शोज थैंक यू हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. इट विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग मगर आई रिक्वेस्ट प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.
खूबसूरत दांत बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगू आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन फिलिंग्स क्राउन्स ब्रिजेस क्लीनिंग एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स फ्री कंसल्टेशन दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट 299-7466.
Grill and Chick, delicious and healthy grilled chicken and rotisserie chicken sandwiches, burgers, wings, squares, popcorn chicken, salad, garlic bread, sweet dishes. Aapne pahunchna 15 Montpelier Street, Brampton, Mississauga Road and Financial Drive, Commercial Intersection, Grill and Chick, 905-456-0500. Grill and Chick.
गाड़ी घर या कमर्शियल जैसे कि बिजनेस ट्रक्स डिलीवरी व्हीकल्स कार्गो वैन्स वर्कशॉप्स ग्रोसरी स्टोर्स रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वक्कार अजीम से राब्ता कीजिएगा. वक्कार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दें मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले. यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट के लिए वक्कार अजीम 416-302-2522-302-2522.
जी साहब नाजरीन वेलकम बैक अगेन एंड साहब 4:52 और 13 सेकंड हमारी घड़ी में हो चुके हैं. मेरे पास 8 मिनट के करीब है टाइम जो कि आपका अल्लाह भला करे इससे पहले कि हम न्यूज़ शुरू करें शाजे जी के साथ तो बेहतर ये है कि एक थोड़ा सा मूड सही करवा दूं आपका एक खूबसूरत गीत की तरफ ले चलूँ मैं और चलिए आपको एक गीत सुनाता हूँ. पल पल तेरे दिल के पास हम रहते हैं किशोर कुमार जी की आवाज़ में. फिल्म थी ब्लैकमेल. समाप्त हुआ
हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ डर डर के, कहता हूँ पल पल दिल के पास तुम रहती हो। प्यार करूं तुम समझोगी दीवाना मैं भी प्यार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल रहती हो।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com, QTL because we care.
जॉर्ज ब्राउन कॉलेज लेकर आ रहा है एक ओपन हाउस अपने तीनों ही डाउनटाउन कैंपस में। इस ओपन हाउस में आपको कॉलेज से मुतालिक मालूमात और स्टाफ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। ये ओपन हाउस हफ्ते को 5 नवंबर सुबह 10 से 2 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा आप रजिस्टर कर सकते हैं georgebrown.ca/openhouse।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन ले या सलाह लेन ले आज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000।
Gateway Chevrolet in Brampton has announced a limited-time special offer on Chevrolet and GMC. Are you ready to drive into fall? 2.99% finance rate for up to 72 months on pickup trucks and excellent financing options on SUVs and crossovers. Eligible Costco members receive a $750 bonus on select vehicles. Reserve your factory order with Gateway Chevrolet now and get a $500 cash bonus. Come to Gateway Chevrolet at 2 Gateway Boulevard today, Queen Street and Airport Road in Brampton. Call 905-791-7111 or gatewaychevrolet.ca.
ਪੌਲ ਆ ਗਿਆ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ